اللهم لك الحمد كما أنت أحبه، وصل على محمد كما أنت أحبه، وقل بنا ما أنت أحبه، فإنك أنت أحب التقوى وحد المغفر. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان زندگی کے اول سے لے کر آخر تک، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک ایک کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، وہ کیفیت ہے حال کی. حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے نکلتا ہے تو اس پہ ایک مشقت آتی ہے، ایک تکلیف آتی ہے اور ایک پریشانی آتی ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ. اس پہ ایک مشقت، تکلیف اور پریشانی آتی ہے، اس مشقت اور تکلیف کا نام حال ہے. اور حال آتا ہے کمال کے لیے، حال کبھی زوال کے لیے نہیں آتا. حال آتا ہے کمال کے لیے، حال کبھی زوال کے لیے نہیں آتا. طالب علم جب اسکول کے لیے یا کالج کے لیے یا مدرسے کے لیے پڑھتا ہے تو اس سے ایک مشقت کا حال آتا ہے، دن رات پڑھنا پڑھنا پڑھنا. ایک اللہ والے کہنے لگے کہ آٹھ آٹھ دن جو ہے نہانے کپڑے دھونے کا فرصت ہی نہیں ملتی تھی، خیال ہی نہیں آتا تھا، گمان ہی نہیں آتا تھا کہ نہانا دھونا بھی کوئی چیز ہے، ہماری ضرورت ہے. بس لگے ہوئے، ایک دھن سوار ہے، ایک جذبہ سوار ہے، ایک دل میں کیفیت سوار ہے کہ بس اس کو پانا ہے اور اس کو کرنا ہے اور اس منزل کو پانا ہے اور اس منزل کی منزل کمال تک پہنچنا ہے. بس دھن سوار تھی. ہمیں یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں بس کتابیں ہی ہوتی تھیں، سارا دن پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھتے تھے. اب اس پڑھائی میں حال آتا ہے، حال یہ آتا ہے کہ اس کی لذتیں چھوٹ جاتی ہیں. اس کے ساتھ والے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی جی چاہتا ہے میں کھیلوں، لیکن کہتا ہے اگر کھیلا تو پیچھے رہ جاؤں گا. اس کے ساتھ والے بعض اوقات شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کہتا ہے میں شرارتیں کروں، کہتے پھر پیچھے رہ جاؤں گا. تو حال جو ہے وہ من کی خواہشات کو توڑتا ہے، اندر کی لذتوں کو توڑتا ہے، اندر کی چاہتوں کو توڑتا ہے. اب جب چیزیں یہ ٹوٹتی ہیں تو پھر حال کے بعد پھر ایک منزل ملتی ہے، وہ ہے کمال کی منزل، ترقی کی منزل، عروج کی منزل. اور پھر ایک آخری منزل کسی کسی کو مل جاتی ہے، وہ ہے وصال کی منزل. وصال کسے کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور اتنی محبت اور اتنا تعلق بڑھ جاتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ آدمی وصال تک پہنچ جاتا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. بس تمنا میں عمر گزر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ حال سے خالی نہیں، انسان کا ہر پل حال سے خالی نہیں. یاد رکھیے گا، انسان کا ہر پل حال سے خالی نہیں، زندگی کا ہر شعبہ حال سے خالی نہیں. کوئی نہ کوئی حال انسان پہ رہتا ہے، کبھی خوشی کا، کبھی غمی کا، کبھی چاہت کا، کبھی محرومی کا. انسان پہ کوئی نہ کوئی حال رہتا ہے. اور ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حال میں بے حال ہو جاتے ہیں اور بے حال سے بدحال ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس حال کو کہتے ہیں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تم بھی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا یا کب، ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, जो समझता है कि यह हाल इसलिए आ रहा कि मुझे आजमाया जा रहा। और सहाबा कराम पे हाल आया, सहाबा कराम बैठे हुए थे तो वही नाजिल हुई, अल्लाह जल्ला शानु का फरमान नाजिल हुआ कि लन तनालुल बिर हत्ता मिम्मा तुहिब्बु, तुम उस वक्त तक कमाल तक पहुंच ही नहीं सकते, तुम उस वक्त तक कमाल तक पहुंच नहीं सकते जब तक तुम्हारे ऊपर हाल ना आए। वो हाल कौन सा? वो हाल ये है कि तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह उसके रसूल को ना जब तक दे दो, उस वक्त तक तुम कमाल तक पहुंच ही नहीं सकते। जो सबसे महबूब चीज है, वो माल की शक्ल में, वो औलाद की शक्ल में, वो बाप की शक्ल में, वो दुकान की शक्ल में, वो नफ्स की शक्ल में, जिस्म की शक्ल में, वो चाहतों की शक्ल में, जिस शक्ल में भी, जो तुम्हारी महबूब तरीन चीज है, महबूब तरीन चीज है, महबूब तरीन चीज है, उस वक्त तक तुम मकाम तक कमाल तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक के तुम उसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान न कर दो। तो एक सहाबी ने सुना ये बात। असल में उनके मन में मिजाज मानने का था और उन्हें यकीन हो गया था जो लगाएंगे वो नकद पहले दुनिया में मिलेगा फिर आखिरत में मिलेगा। जिसको नकद का यकीन होता है ना, वो कहने लगा सखी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता। ये लफ्ज याद रखिएगा फकीर का, ये मेरे मुर्शिद हजवी रहमतुल्लाह अलैह की बात है कि सखी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, सखी वादे की बुनियाद पे सखावत करता है। किस बुनियाद पे? वादे की बुनियाद पे। और फिर सखी को वादे पे यकीन होता है, सखी को वादे पे यकीन होता है, और वो सखावत क्या है? खिदमत के एतबार से कर रहा है, माल के एतबार से कर रहा है, जान के एतबार से कर रहा है, या नफ्स के एतबार से कर रहा है, या वक्त के एतबार से कर रहा है? सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, तो वादे को सामने रख के सखावत करता, वादे को सामने रख के सखावत। अब सहाबी ने रजी अल्लाह तआला ने जब ये बात सुनी तो उनको एक लौंडी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, उसी वक्त उसको अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। बात आई है जो सबसे महबूब चीज तुम्हारी है उसको अल्लाह के लिए दो। कुर्बानी अभी आ रही है, मेरा अल्लाह कहता है लूला लंगड़ा जानवर मैं कबूल नहीं करता, और दांत टूटा हुआ मैं कबूल नहीं करूंगा, दांत तो नजर ही नहीं आता मुंह के अंदर होता है, सींग टूटा हुआ तब भी कबूल नहीं, क्यों? मुझे देना है अच्छा तो लेना है अच्छा तो फिर दो भी अच्छा, क्यों? तुम्हारी महबूब चीज है, खूबसूरत लेने के लिए महबूब चीज लगेगी ज्यादा, क्या वो माल है? खूबसूरत लेने के लिए महबूब चीज लगेगी नहीं लगेगी? अल्लाह वालों लगेगी, वो माल है। और बदसूरत और लूली लंगड़ी और भूखी प्यासी और हड्डियों का ढांचा, उसके लिए माल लगेगा तो सही, थोड़ा लगेगा। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला को ने ये बात सुनी, उनका एक बाग था और बाग भी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत जिसकी हद नहीं। वहीं बैठे एक बारगाह रिसालत कमली वाले सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे बैठे ऐलान फरमा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग आपकी खिदमत में हदिया है, इसे अल्लाह के लिए वक्फ। आपने कबूल फरमा लिया। अब बाग के अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए, बाग से बाहर खड़े होकर अपनी बीवी बच्चों को, बाग के अंदर घर था, रहते थे, जैसे फार्म हाउस बनाते हैं ना लोग, बड़े बड़े फार्म बनाते हैं और उसके अंदर बागात होते हैं और पता नहीं क्या ऐश वैशरत का सामान होता है, उसके अंदर घर भी होता है। बाग के बाहर खड़े रहे और कहने लगे कि सब घर वालों को कि बाग के बाहर आ जाओ अपना सामान घर की जरूरियात का लेके, अब ये बाग मैंने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। और घर वालों का मिजाज बना हुआ था, बाप का मिजाज बना, बेटे का बना, बीवी का बना, बेटी का बना, बच्चे का बना, औलाद का बना, पोते का बना, पोते का बना। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि ये क्या किया, उसने कहा वाह 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 वाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया, इससे बड़ी सादत क्या है? اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی، اس سے بڑی سعادت کیا ہے. ایک درویش تھے، انہیں یہ آیت کا پتہ چلا کہ یہ آیت میں صحابہ کرام نے تو کمال کر دیا. کسی صحابی کا گھوڑا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی ایک غلام رکھا. اللہ کے دیکھ جب اللہ کا معاملہ آئے نا، جب اللہ کا معاملہ آئے اور کوئی چیز کو تجھ سے لینے آئے تو میں تجھے کہتا ہوں جو سب سے بہترین اونٹ ہے وہ دینا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب ایک جگہ اللہ کے لیے اونٹ کو ذبح کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اونٹ ہیں جتنے کھڑے ہیں ان میں سے ایک اچھا اونٹ لیا. وہ نا اس نے کہا کرنا تو ذبح ہے، یہ اونٹ ایک خوبصورت ہے، بڑا با کمال ہے اور بڑا مہنگا ہے. جس طرح گاڑی چھوٹی بڑی ہوتی ہے بھائی، اونٹوں کے بھی کمال ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کے بھی اونٹ ہیں، کروڑوں روپے کے. آپ مانیں گے کہ عجیب بات ہے، کروڑوں روپے کے بھی اونٹ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے کے بھی اونٹ ہوتے ہیں. ہاں کروڑوں روپے کے بھی اونٹ ہوتے ہیں. اب جو ہے انہوں نے غلام سے فرمایا کہ وہ اونٹ جو ہے دے دو اس کو. اب وہ ایک عام سا اونٹ لے آئے. کہنے لگے تو نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے کہ تیرا میرا وعدہ ہوا تھا، جب اللہ کا معاملہ آئے تو اس کو محبوب چیز کو دینا. تیرے مطابق محبوب چیز وہ تھی جس کو تو بچا رہا تھا، میرے مطابق بھی محبوب وہی تھی جو میں دے رہا تھا. میں محبوب دینا چاہتا ہوں محبوب بننے کے لیے، اس کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے محبوب دینا چاہتا ہوں، اور تو محبوب کو ہٹا کے مجھے محبوبیت سے ہٹانا چاہتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ایک محبوب چیز تھی، وہ دبدبہ تھا، وہ روب تھا، وہ جلال تھا، وہ کمال تھا. ان کے ہاں یہ محبوب چیز تھی، ان کے اندر غیرت تھی، نہ جھکنا تھا، ان کی محبوب چیز یہ تھی. جب یہ آیت سنی تو بس اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنی حیثیت کو مٹا دیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ چاہے عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، طبیعت میں اترے نہ اترے، دل کے اندر سمجھ، دل کے اندر عقل میں سمجھ اور بولوں کی سمجھ ساتھ دے نہ دے، آپ نے ویسا کر کے دکھایا. یہ حال آیا نہیں آیا، یہ میں تو ایسے تذکرہ کر رہا ہوں. قدم قدم پہ حال آتا ہے، قدم قدم پہ چاہتیں ٹوٹتی ہیں، قدم قدم پہ طبیعتیں مٹتی ہیں، قدم قدم پہ. اس لیے فرمایا جو کسی فقیر کی صحبت میں رہتے ہیں، جو جتنا قریب رہیں گے اتنا ان پہ حال زیادہ آئے گا، یاد رکھیے گا، اتنا ان پہ حال زیادہ آئے گا. انہوں نے کہا یہ میں نے کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا. اب وہ بیچارہ ایک ہی فارغ نہیں ہوا، وہ کرتا کیا؟ اب وہ اپنی دلیل بھی نہیں بتا سکتا، نہ دلیل نہ وکیل نہ اپیل، نہ دلیل نہ وکیل نہ اپیل. اب اس پہ حال آیا، اب اس حال پہ وہ اس نے کیا صبر اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوا، اس پہ دل کا ایک دریچہ کھل گیا. ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں حال آئے اور قدم قدم پہ آئے، لیکن جب حال آیا تو انہوں نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا، حکم کو قربان نہیں کیا. پھر وہ حال ان کے لیے زوال کا ذریعہ نہیں بنا، کمال کا ذریعہ بنا. ایک درویش نے سنا تو انہیں جو ہے ایک آبا تھی بہت زیادہ، اس پہ جواہرات جڑے ہوئے تھے، مالدار تھے، تھے بھی ولی اللہ کے اور مالدار بھی بہت زیادہ تھے. ولایت کے لیے جھونپڑی اور پھٹے پرانے کپڑے اور پیمن لگے کپڑے ضروری نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ایسے تھے جن کے پاس اربوں ڈالر تھا، اب بھی ڈالر کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اربوں ڈالر تھا، اور ان کی اعلی پوشاک ہوتی تھی. اب ان کی ایک پوشاک تھی جن درویش کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو ہے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ پوشاک نہیں پہننی. کیوں؟ محبوب بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے. कोई एक चीज महबूब को कुर्बान करना पड़ेगा। रात को ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, तूने अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है, अल्लाह जल्ला शानहू ने तुझे तेरा इंतखाब अपनी मोहब्बत के लिए कर लिया है। कुछ ऐसा पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है, साहब मुझसे कहने लगे, कुर्बानी का दिन था और मैं ईद की नमाज पढ़ के आया घर। ईद की नमाज पढ़ के आया तो मैंने देखा कि बकरे गाय भैंस वगैरह लोग ज़बह कर रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, घरों में गलियों में खून बह रहा है। मैं छत पे खड़ा था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे कुर्बानी के, तंग दस्त तो तही दस्त था, मुफलिस था। तो मैंने सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक मन की आवाज़ आई कि तेरे पास कुर्बानी करने के लिए बहुत कुछ है, तू कर सकता है। क्या? कि तू अपनी कोई ऐसी चीज छोड़ दे जिसमें तू अल्लाह की नाफरमानी करता हो, वो तू आज कुर्बानी कर दे। उसने बकरे की कुर्बानी की, किसी ने गाय की कुर्बानी की, किसी ने भैंस की, किसी ने मेंढे की, तो आज अपने नफ्स की कुर्बानी कर दे। पर मैंने आसमान की तरफ सर उठा के अल्लाह की ज़ात आली से अर्ज किया, इलाही ये राज तेरे और मेरे दरमियान है, मेरा फला ऐब था, आज के बाद उसको छोड़ता हूँ, मैं उसकी कुर्बानी करता हूँ। अल्लाह उसके छोड़ने पे अब मेरे ऊपर हाल आएगा, बेचैनी का, बेकली का, बेकरारी का, तबीयत चाहेगी, लेकिन या अल्लाह तेरी जात की खातिर, तेरी मोहब्बत की खातिर मैं उसको कुर्बान करता हूँ। कहने लगे, वो मैंने कुर्बानी दी और फिर उस कुर्बानी पे मुझे जो मिला मैं बता नहीं सकता। अपनी महबूब चीज है वो, जब तक मेरे दोस्त को कुर्बानी नहीं देंगे, महबूबियत की कुर्बानी नहीं देंगे, जिससे मोहब्बत है, वो महबूब चीज जिससे मोहब्बत है, वो महबूब चीज जिससे मोहब्बत है। आप इस वक्त जो बैठे हैं आले इब्राहिम में से हैं, आले इब्राहिम इन्नका हमीद मजीद पढ़ते हैं हर कुरान में हैं आप, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी अल्लाह जल्ला शानहू ने, और कुर्बानी भी कैसी मांगी, मेरी बात पर तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह जल्ला शानहू बेनियाज है, कबूलियत में ताखीर करे या ना कबूल करे तो अंबिया कराम के भी कर सके, बेनियाज तो हुआ। तकरीबन 99 और 100 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह जल्ला शानहू से बेटा मांगते रहे, फिर अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया, नाम इस्माइल रखा। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने कुर्बानी मांगी उसकी और उन्होंने कुर्बानी दी। अल्लाह अकबर, ये माल की कुर्बानी आसान होती है या अपनी जान की कुर्बानी आसान होती है? शायद आसान हो जाए, शायद अपने मकान की कुर्बानी आसान हो जाए और 100 साल के बाद मिले बेटे की कुर्बानी, जरा गुमान तो करो। आप हजारों साल पीछे चले जाओ, आप हजारों साल फलस्तीन की वादी में चले जाओ, पीछे चले जाओ फलस्तीन की वादियों में, और आप नजारा करो इस बात का, वो मंजर क्या होगा जिस वक्त ये मंजर कि मेरे लिए बेटे को ज़बह कर दो, तो बेटे से बेटा भी छोटा सा, आपने फरमाया बेटा ऐसे ऐसे हुक्म है, तो मेरे अब्बा देर कैसी। और फिर फरमाया कि पट्टी, फरमाया नहीं अब्बा, मेरे मुंह पे पट्टी बांध दो, आंखों पे, और मेरा सर नीचे कर दो, कहीं आंखें टकरा के मोहब्बत आ जाए, और मोहब्बत में हाले मोहब्बत से कहीं हुक्म न टूट जाए, और वो जो कमाल तक पहुंचना है हम उससे न रह जाए। हाले मोहब्बत, आंखें ना एक दूसरे से मिलें, बाप और बेटे की मोहब्बत में मौजे ना आ जाए। सारा अमल किया, छुरी तेज की, छुरी कम ना हो, सारा अमल किया और हत्ता के छुरी चल गई। ये नहीं है चलो भाई आख तुमने आखिरी कर दिया है अब छोड़ दो, नहीं, छुरी चल गई और खून बहा और फवारे बहे। लिखा है कि उस वक्त फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल पे अल्लाह पाक की इजाजत से तवज्जो की, जब खून के फवारे बहे उस वक्त उनके मन में, उनके दिल में एक जर्रा बराबर भी अपने बेटे की कुर्बानी का अफसोस नहीं हुआ, बल्कि एक खुशी की लहर थी कि मैं कामयाब हो गया, रब के हुक्म पूरा कर दिया। वो तो अल्लाह पाक ने जन्नत से मैना नीचे कर दिया, बेटे को हटा दिया अपने अमर से, अपने हुक्म से, और वो सुन्नत इब्राहिमी की क्यामत तक जो है उस कुर्बानी को जिंदा फरमा दिया। तो जो भी इस्तेआत रखता हो उसके लिए लाजिम है कि वो कुर्बानी करे। जिंदगी के कमाल तक पहुंचने के लिए, जिंदगी के उरूज तक पहुंचने के लिए जब तक अपनी महबूब चीजों को कुर्बान नहीं करेंगे, जैसे मैंने अर्ज किया कि लन तनालुल बिर्रा, ये आयत पढ़ी कि जब तक उरूज और कमाल तक उस वक्त तक पहुंच नहीं सकते, वो चीज कुर्बान ना कर दो जिसके यहां तुम्हारी महबूब है, जहां तुम्हारी जान अटकी हुई है, जहां तुम्हारी जान अटकी हुई है। हमारे एक बुजुर्ग थे अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो 96 साल की उम्र में फौत हुए। नवाब ऑफ कल्लात के वो वजीर भी थे रहे, और महकमा औकाफ के बहुत बड़े अफसर रिटायर हुए, बड़े तकवे वाले दरवेश थे। तो वो कहने लगे कि नवाब ने जो है एक बागी था, उसकी दुकान थी मेवों की, उसको गिरफ्तार किया। फिर उसको गिरफ्तार करके कहा कि तू अपनी बगावत से तौबा भी कर और लिख के दे। उसने कहा नहीं, लिख के देता, मैं बगावत जारी रखूंगा, जेल में रख जितना असर रख। और नवाब जो है, फिर नवाब होता है, एक तोला राम था, उसका नाम तोला राम था, वो नवाब के खिलाफ बगावत करता था। उसने उसको जेल में दो और जेल में रगड़े दिए। उसने कहा, इसे पूछा क्या नाम है? उसने कहा तोला राम है। वो कहा ना, अभी तोला राम है, जब ये कहेगा ना माशा राम, माशा ग्राम के बराबर होता है, तोला 12 ग्राम के बराबर होता है, जब ये कहेगा ना माशा राम, उस वक्त इसको छोड़ना। फिर पूछते थे क्या नाम है तेरा? नहीं, तोला राम है। उसने कहना, उसने अपने मन की महबूब, अपने नफ्स की अना को जब छोड़ा ना, और जिस दिन कहा मेरा नाम माशा राम है, नवाब ने कहा इसको छोड़ दो। इसमें एक सबक याद रखना, ये वाक्य मैंने ऐसे नहीं सुनाया। जिस दिन मन में उतर जाती है बात और अपने आप को झुका देता है ना बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और अपने आप को किसी फकीर के सामने झुका देता है, फिर उस दिन रब मिल जाता है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उठियार फरीद थी शादवल, मुंह झांको ना कर यादवल, ए झोंका थिसन आबादवल, दरिया ना मांदे सदा हिकमणी, आपको समझ ही ना आई होगी मैं क्या कह गया हूँ। ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ना नवाब के, नवाब मुरीद था, तो नवाब को एक काम का कहा, नवाब को एक काम का कहा, नवाब ने थोड़ी सी एराज की। हुजूर ने खत लिखा, मुर्शिद ने बस एक खत में एक लफ्ज लिखा, जेर बन जबर नबर मत पेश आवी, नहीं समझे, जेर बन जबर नबर मत पेश आवी। अब ये कैसा बड़ा नुकता है, आरिफाना नुकता है, हैं? नवाब ने खत को आंखों से लगाया, कहने लगा बस समझ आ गई मुझे। तो क्या बात अर्ज कर रहा था? बोलो। हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हम ये सोचें कि हमारी मन की चाहते क्या है, कुर्ब इलाही पाना चाहते हैं, कुर्ब इलाही। मुझे ये बताएं, हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं सिद्दीक अकबर का सारा माल वसूल और कबूल कर रहा हूं, और सिद्दीक अकबर के घर तो कुछ बचा ही नहीं है, कोई बच्चों का हक, कोई 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 उसके नाबीना वालिद का हक, नाबीना थे, अबू कुहाफा थे, अबू कुहाफा थे, नाबीना थे, उनकी बेटी अस्मा का हक, आयशा का हक रिजवानुल्लाह अजमईन, इनका हक, उन्हें इल्म था कि जब तक ये चीज नहीं जाएगी ऊपर से रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के फैसले नहीं होंगे। और फिर जिस दिन सारा कबूल कर लिया और सारा कबूल हो गया, उस दिन अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से एक पैगाम आया कि आप अपने सिद्दीक दोस्त से पूछें क्या ये मुझसे राजी हैं। अल्लाह की कसम, कायनात में कम बेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं, किसी एक सहाबी पैगंबर के साथी के बारे में ये नहीं आया, सिर्फ मेरे आका कमली वाले के साथी सिद्दीक अकबर के बारे में ये आया है। और आया उस वक्त है जब सब कुछ लग गया। कहीं जज्बात की कुर्बानी दिलवा दी, दिलवा रहे हैं, सिद्दीक अकबर से माल की कुर्बानी दिलवाई, फारूक आजम से माल की भी दिलवाई, जज्बात की भी दिलवाई। जलाली बादशाह थे, जलाली बादशाह थे, कोड़ा हाथ में रखते थे और खूब जरा खबर लेते थे, इसलिए बाल दरवेश जलाली भी होते हैं, बाल जमाली भी होते हैं। मेरे मुर्शिद अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलाली थे, थोड़ी बहुत मारे खाने की शहादत इस फकीर ने भी ली है। आज तो यहाँ किसी को तिनका क्या, थोड़ा सा उनको साफ करके ना बोलो तो वो कहते हैं हमारी तौहीन हो गई है। मेरे हजरत आखिरी उम्र में फरमाया करते थे, आज खानकाहों में लोग अपने मुर्शिद से एहतराम कराने जाते हैं, जिसे मैं लफ्ज कहता हूँ प्रोटोकॉल लेने जाते हैं, कि एहतराम उनका हो गया, मुर्शिद बाहू जीवे हो गए, एहतराम ना हुआ उन्होंने कहा ये पढ़िए तुम्हारी फकीरी हम जा रहे हैं। अपने मन की आप कैफियत देखें हम कि हमारी सबसे महबूब चीज कौन सी है। मैंने एक दफा ये बयान किया, एक साहब कहने लगे जी मुझे तीतरों से ज्यादा मोहब्बत है। जान से भी ज्यादा मोहब्बत होती है तीतर पालने वाले की, उससे मोहब्बत देखें, जान से भी ज्यादा मोहब्बत होती है तीतर से। हाँ, और बाहर मुर्ग वाले होते हैं और बाज बटेर वाले होते हैं, बाज कुत्तों वाले होते हैं, बाज रीछ वाले होते हैं, बाज मोर वाले होते हैं, बाज अकाब वाले होते हैं, बाज ये खूबसूरत चिड़ियों वाले परिंद वाले होते हैं। शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के पास दुर्वेश आए और देखा ना कि सामान पड़ा हुआ है, शीशियां हैं, बोतलें हैं, डब्बे हैं, उनमें सामान है। तो वो कहने लगे तेरी हर हर चीज में तो जान अटकी हुई है, तेरी जान निकलेगी कैसे। ये अपनी कुर्सी की शान पे बैठे हुए थे, कहने लगे तू अपनी बता तेरी कैसे निकलेगी। उन्होंने कहा हमारी ऐसे निकलेगी, दुकान के सामने चादर ओढ़ी कलमा पड़ा, कहने लगे अशहदु अल्ला इल्ला, देखा तो फौत हो गए थे, हमारी कैसे निकलेगी। बस वो कहते हैं ना कि बस एक बिजली से पहले कूदी फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो पहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है जिगर नहीं है। हाँ, बस वो बिजली ये कूंदी, सब कुछ शेख अत्तार का सब कुछ, शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह का सब कुछ लूट के ले गई। और वो सारी महबूब चीजें जिनके अंदर जान अटकी हुई थी, उन महबूब चीजों से जान निकल के एक महबूब के कदमों में डाल दी। इन सलाती व नुसुकी वा वा ममाती लिल्लाहे, बस मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ या अल्लाह तू ही तू है, मेरी जिंदगी की सारी मता तू है। जान एक जगह अटक गई। देखो बात सुनो, जिससे मोहब्बत होती है ना उसको पेश करते हुए एहसान नहीं होता, एजाज होता है, लफ्ज याद रख। पेश करते हुए एहसान नहीं होता उस पे, एजाज होता है उन्होंने कबूल कर लिया है। ये दुनिया में मैं इसके बड़े तजर्बे देखता हूं। मेरे एक जानने वाले एक साहब ऐसे, उसने एक सोने का ताज बनवाया और उसके कीमती जवाहरात जड़वाए। एक साहब को हुक्मरान था, उसको वो ताज पेश किया और ये ख्वाहिश की कि ये मेरे लिए आजाद होगा कि कबूल भी फरमाए और मैं आपके सर पे सजा दूं, मैं आपके सर पे सजा दूं। और उसने सर झुकाया और उसने सर पे सजाया और उसने कहा इससे बड़ा दुनिया को कोई एहसास नहीं, उस हुक्मरान से उसको मोहब्बत थी। उन्होंने एक साहब कहने लगे कि हमारे वो थे, उन्होंने अपनी शादी की, घर की बेटी बेटी की, हर बराती को एक थाली, एक गिलास और एक कटोरा चांदी का बनवाया, उसमें खाना दिया और कहा इनको साथ ले जाओ। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, कहा इनको साथ ले जाओ। और ये कहा कि जी आपकी मेहरबानी, आपने कबूल कर लिया, भला हो ना उठे आदा जेना नीम या नाल निभाई हो। मतलब जिससे मोहब्बत होती है, जिस चीज में मोहब्बत होती है उसको दे के एहसान नहीं होता, एजाज होता है। जब अल्लाह जल्ला शानू से मोहब्बत होगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, फिर दोस्तों फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के, अल्लाह के लिए दे के, फिर एजाज समझा जाएगा। चाहे वो जान की कुर्बानी है, वो माल की कुर्बानी है, वो इज्जत नफ्स की कुर्बानी है, वो अपनी चाहतों की कुर्बानी है, वो अपने मन की कुर्बानी है। कितने लोग मिलते हैं कहते हैं हमारा अफसर जो है बड़ा सख्त है, मिजाज का बड़ा तेज है, बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने कहा क्या करें, उसने कहा क्या करें, नौकरी करनी है बस, है ना। एक साहब बैठे हंस रहे हैं, उनका अफसर ऐसा है, उसने मुझे ये बात कही, अभी बैठे हंस रहे हैं, क्या करें नौकरी करनी है। अच्छा, नौकरी के पीछे नोट है ना, और नोट के पीछे अल्लाह पाक ने जरूरियात जिंदगी को लगा रखा। जब इस शख्स के पीछे अल्लाह की जात आली होगी और जब इस शख्स के पीछे अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, मेरे दोस्तों फिर ये हर तौहीन को अपने लिए ताजीम समझेगा। तौहीन को क्या समझेगा? ताजीम समझेगा। कहेगा तो इज्जत ताजीम मेरी महबूब चीज थी, ताजीम मेरी महबूब चीज थी, और इससे बड़ी महबूब चीज अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनको पाने के लिए ये महबूब अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं, असल महबूब मिल रहा है। ये जो फकीरों के पास लोग होते हैं ना, उनमें सबसे पहली जो चीज पैदा होती है वो यही पैदा होती है। मैंने उस दिन अपने दोस्तों से अर्ज किया, मैंने कहा मखदूम बन के रहोगे शिकायतें आएंगी, मखदूम बन के रहोगे ना हर किसी से शिकायतें होंगी, खादिम बन के रहोगे तो शिकायत इसलिए नहीं आएगी, काम तो मेरा था, जितने फीसद इसने कर दिया इसकी मेहरबानी, काम तो सारा मेरा था, मैं एक शोबे की खिदमत मेरे जिम्मे नहीं, सब शोबों की खिदमत मेरे जिम्मे है, एक शोबे की नहीं, सब शोबों की खिदमत मेरे जिम्मे है, अब मैं नहीं कर रहा इसकी इसकी हो दिल में निदामत, इसकी हो दिल में निदामत, और जितना हो रहा उसका हो शुक्र। फिर अल्लाह पाक जल्ला शानहू इसको कबूल भी फरमाएंगे और अल्लाह पाक इसको तरक्की भी अता फरमाएंगे और अल्लाह पाक इसको चलाएंगे भी सही। अपनी महबूब चीज को तलाश करें, हमारी मोहब्बत कहां अटकी हुई है? आज हर शख्स अपनी मोहब्बत में भटका हुआ है, आज हर शख्स अपने कहने लगा मुझे आपसे मोहब्बत है, उसने कहा नहीं, तुझे अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है तो पहले अपनी ईंटें ठीक कर, अपनी बुनियाद की ईंट ठीक कर, अगर तेरी बुनियाद की ईंट ही ठीक नहीं होगी तो ये चीज जुदाई का जरिया बन जाएगी, रब से मिलाने का जरिया नहीं बनेगी। इंसान का इंसान से मोहब्बत करके रब मिल जाना नहीं, हां एक शक्ल में, एक शक्ल में। इसलिए कहते हैं कि अपने मुर्शिद से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। और इश्क जो है ना, इश्क के लिए हर चीज कुर्बान कर देना, ये जो एक बेल होती है इश्क पेचा कहते हैं, जिस दरख्त पे डाल दो उसी को खा जाती है, आकाश बेल भी कहते हैं उसे, है? इश्क पेचा भी कहते हैं उसे, वो दरख्त उसे इश्क करता है, अपना जो कमाता है उसको खिला देता है। और बाज माए आती हैं, जो कमाता है उधर जाके दे देता है, घर में आटा नहीं होता, बेटा मैं क्या करूं, मुझे कोई वजीफा बता। मैंने कहा भाई ये बात तो लाजवाब है, जिस चीज से इश्क होता है जो कमाता है तन मन धन हर चीज उसी पे लगा देता है, उसी पे लगा देता है। अच्छा, दुनिया के ताने खूब सुनता है, बातें खूब सुनता है, गालियां खूब सुनता है, असर ही नहीं होता। एक साहब कहने लगे ये गधा है ना, गधा, ये गधा, सारा दिन इससे काम करवाओ, सारी रात इससे काम करवाओ, सारी रात। और मुझे याद है हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के ना, वो बाग के साथ एक छोटा सा टुकड़ा था, उसमें रेत का टीला था छोटा सा। अब बिल्डोजर वाले कहते थे जी हम रेत जो खींचे खींच के किसी दूसरे की जमीन में डालें, वो कबूल नहीं करते थे। हमारे यहाँ टीला उठा के अपने हमारा अपना टीला उठा के हमारी जमीन में डाल रहे हो, तो बात की गधे वालों से। और वो फरमाने लगे मुझे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे सारा दिन गधे काम करते हैं, मुहावरा भी बना हुआ गधे की तरह काम करता है। वो फरमाते थे मुझे, एक अंग्रेज का हवाले देते थे, उन्होंने कहा जी इसका नाम उन्होंने रखा हुआ मिनिस्टर ऑफ लेबर। तो अब वो सारा दिन गधा काम करता। शाम को मैंने उससे पूछा उन गधे वालों से, भाई ये थकता नहीं है? उसने कहा जी सिर्फ इसको छोड़ दो, कच्ची जगह हो, मिट्टी हो, रेत हो, उसमें पहले ये रेत को सूंघेगा, उसके बाद दो तीन चार दफा लौट पोट होएगा, बस लौट पोट होने के बाद फिर ये तैयार, ये फिर तैयार। मुझे सब कहने लगे कि मुझे फलां से मोहब्बत है, लोग मुझे गालियां देते हैं और बातें करते हैं, बस मैं कहने लगे थोड़ा सा ना जाके ऐसे लौट पोट करता हूं अपने आप को, और उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाता हूं मोहब्बत करने के लिए। दुनिया की मोहब्बत में जिल्लतें रुसवाइयां बर्दाश्त करी और गधे बन गए। अल्लाह की मोहब्बत के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, वहां अपनी महबूब चीजें दुनिया की मोहब्बत के लिए कुर्बान करना एजाज बना, और यहां अगर कुर्बानी हो तो तौहीन हो जाए। क्यों? वो मोहब्बत का मियार अभी तक नहीं मिला कि मेरी महबूब चीजें, इज्जत मेरी महबूब चीज है, वकार मेरी महबूब चीज है, गैरत मेरी महबूब चीज है, ये चीज मेरी सारी महबूब चीजें हैं, और ये महबूब चीजें मेरी अभी तक इसकी जो है वो नीलामी नहीं हुई, तो मालूम होता है कि अभी तक मुझे मिला कुछ नहीं। देखो कोई चीज बिकने के बाद जो है ना, जब तक बिके ना थे कुछ पूछता ना था, जब तक बिके ना थे और तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। एक दरवेश थे, उनकी खिदमत में एक आदमी आया, बहुत अरसा रहा। एक दफा कहने लगा शेख लगता यह है कि या मेरी मुकद्दर में मार्फत को पाना नहीं है, या अभी आपने इस काबिल नहीं समझा। तो पूछने लगे क्यों? कहने लगे जी इस मंजिल पे तो ठोकरें लगी हैं, अभी तक तो एजाज हुआ है, ठोकर नहीं लगी कोई, कभी जान की, कभी माल की, कभी वक्त की, कभी तबीयत की, कभी खाने का खिलाफ, कभी मिजाज के खिलाफ, कभी तबीयत के खिलाफ, कभी फला के खिलाफ, वो तो इस मंजिल पे कुछ ठोकरें जरूर लगती हैं, अभी तक मुझे कोई ठोकर नहीं लगी, या तो मैं इस काबिल नहीं हूं या मेरी मुकद्दर में नहीं। तो शेख ने अजीब बात फरमाई, फरमाने लगे आज तूने अपने आप को पेश किया है, फिर हम थोड़ी सी ठोकर लगा देंगे, देखेंगे कच्चा है या पक्का है, कच्चा है या पक्का है। अपनी महबूब चीज को तलाश करें, अपनी महबूब और मरहूब चीज को तलाश करें। मुझे एक दोस्त कहने लगे जी अगर आप थोड़ा सा कुछ आबाब अंदर अंदर हमें आके कहते हैं, अगर कभी ऐलान कर दें कि भाई जो इस खानकाह के लिए जिंदगी वक्फ करना चाहता है तो हम कबूल करेंगे, जो आधी जिंदगी देना चाहता है, आधी से मुराद आधा दिन, जो चौथाई जिंदगी देना चाहता है, चौथाई से मुराद चौथाई दिन, तो हम कबूल करेंगे यहाँ की खिदमत के लिए। मुझसे कहने लगे जी आप जरा ये ऐलान कर दें तो लोगों को पता चल जाएगा, तो लोग सादत समझेंगे, बहुत लोग चाहते हैं कि हम यहाँ खिदमत करने के लिए आना चाहते हैं, पता नहीं इजाजत है या नहीं है। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैं ऐलान कर दूंगा, जो पूरी जिंदगी देना चाहता है, हमारे माशाल्लाह मोहसिन अंसारी साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, उन्होंने पूरी जिंदगी दी हुई है, और भी साथी हैं, और जो आधी जिंदगी कि भाई आधा दिन अपना काम है, आधा दिन यहाँ खानकाह की खिदमत है, और जो चौथाई के कुछ घंटे कुछ वक्त बचा हुआ यहाँ का खिदमत है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खिदमत जितनी भी है, और ये कभी कहीं जान की कुर्बानी है, कहीं माल की कुर्बानी है, कहीं नफ्स की कुर्बानी है, कहीं औकात की कुर्बानी है, और ये सारी कुर्बानियाँ एक हाल होती हैं जो इस हाल में अपने आप को बेहाल नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह जल्ला शानहु की ज़ाते आली की तरफ मुतवज्जे रहेगा, अल्लाह पाक उसको नवाजेंगे। और सहाबा कराम की जिंदगी हमारे सामने है, अल्लाह वालों की जिंदगी हमारे सामने है। अब आप ये बैठ के सोचो अल्लाह वालों कि हम कौन सी ऐसी महबूब चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करें कि अल्लाह के महबूब बन जाए, है ना सोचने की बात। साहबा ने महबूब चीजों को कुर्बान किया, महबूब चीजों को कुर्बान किया, महबूब चीजों को कुर्बान किया, अपनी महबूब चीजों को कुर्बान किया, जो सबसे महबूब चीजें थी, जो सबसे महबूब चीजें थी उनको कुर्बान किया। जब उनको कुर्बान किया अल्लाह जल्ला शानहु के महबूब बन गए, बने नहीं बने हैं? अब हम अपनी महबूब कौन सी चीज कुर्बान करें? जैसे मैंने वाक्या सुनाया, वो छत पे खड़ा था और कुर्बानी का दिन था, उसने कहा ले अल्लाह पाक, या अल्लाह आज के बाद मैं अपनी इस महबूब चीज को कुर्बान करता हूं, और कुर्बान किया उसने। आज के बाद मैं अपनी इस महबूब चीज को कुर्बान करता हूं। हमारी कोई ऐसी आदत, हमारी कोई ऐसी आदत, हमारा कोई खुफिया या ऐलानिया ऐसा कोई गुना, या हमारी कोई ऐसी कैफियत, या हमारा कोई ऐसा खर्च था जो अल्लाह की रजा के खिलाफ था, जान के एतबार से या माल के एतबार से या वक्त के एतबार से, आज के बाद हम कुर्बानी करें कि अल्लाह पाक बस बैठे बैठे, अंदर बैठे बैठे, ऐसी मन में बैठे बैठे, दिल ही के अंदर बैठे बैठे मेरे रब के दरमियान और मेरा मामला है, मेरा मामला अल्लाह और उसका रसूल जाने, अल्लाह अल्लाह के साथ तो बंदे का मामला है, या अल्लाह मैं आज के साथ आज बैठ के ये फैसला करता हूं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने तो ये फैसला किया था, और अल्लाह जल्ला शानहु की मोहब्बतें और ताकतें और अल्लाह की फतेहात और अल्लाह पाक की रहमतें उनके साथ शामिल हुई थी कि आज क़यामत तक उनका नाम है, उनकी इज्जतें हैं, उनका वक़ार है, मैं अल्लाह के यहाँ कौन सी कुर्बानी पेश करूँ। एक एक बंदा कहने लगा जी, उसने कहा, एक पठान मिला मुझे, उसने कहा कि मैंने उससे कहा आपको फलां तबीयत खराब है, आप नस्वाद छोड़ दें। मुझे कहने लगा कमाल करते हैं आप, मैं ड्राइवर हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ, तुम्हारा एक अफसर बैठा था, उसने कहा कि नस्वाद छोड़ दें, मैंने स्टेरिंग छोड़ दी। उसने कहा जी नस्वाद नहीं खानी तो जिंदगी कैसी, बस अब हम मरेगा। उसने कहा भाई जल्दी कर स्टीयरिंग पकड़, मुझे तो ना मार। अच्छा, उसने ये बात कही, मैंने उसे ये एक आयत सुनाई और उससे कुछ थोड़ी सी बात की कि वो तेरी महबूब चीज है, चाय तेरी महबूब चीज है। एकदम हमने ट्रेन से क्वेटा का सफर किया, क्वेटा से जो है लाहौर का ट्रेन में सफर किया, तो ये सुबह रफ्तार तेज रफ्तार ट्रेनें तो थी नहीं, क्वेटा एक्सप्रेस हर स्टेशन पे एक साहब थे, वो चाय ले आते और चाय रख के किसी से बात नहीं करते थे, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, लब दोज लब सोज, लबों को जलाने वाली चाय जरूरी थी, लबों को थोड़ी सी ठंडी हुई कहने लगे तू उठा के पी ले, हदिया कर देते थे। और वो जो हदिया चाय करते थे उसमें भी आप उंगली नहीं डुबो सकते थे, लब तो बड़ी बात है, उंगली आप नहीं डुबो सकते थे, उसके मुताबिक बेजायका हो गई है, कोई मजा नहीं इसके अंदर, जो मेरे लब ना जलाए उसका कोई मजा ही नहीं। मैंने उससे बात कही, उस नस्वार वाले से, मैंने कहा अब तेरी ये मोहब्बत है, नस्वार तेरी मोहब्बत है, सिगरेट तेरी मोहब्बत है, चाय तेरी मोहब्बत है। आज मेरे एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं परेशान हूं, मेरी वालदा से भी नहीं बनती, घरेलू तौर पे बहन भाइयों से भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, मैंने कहा इस अल्लाह वाले से अर्ज करो तो पहले एक कुर्बानी दे, और कुर्बानी दे के देख फिर तुझे उसे मिलता है या नहीं मिलता। हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, बाज़ कुर्बानियाँ खाने पीने की भी होती हैं, क्योंकि वहाँ जान अटकी हुई होती है, एक बंदा कहता है चाय के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है, चाय ना पीऊं तो मेरा गुजारा ही नहीं है। उसने मैंने सोचा, मैंने कहा इससे कहूं तो सबसे पहले अपनी चाय की कुर्बानी दे। आप यकीन जानिए वो थोड़ा सा पड़ा हुआ पठान मेरी इस बात पे आ गया। उसने कहा जी अगर नसवार छोड़ने से राबी मिलता है, और डब्बी थी नसवार की थी उसमें शीशा लगा हुआ था, उसने उठा के ना तो थैंक्स थैंक्स। एकदम एक सिगरेट वाले से मैंने इस बात की, चेन स्मोकर था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, खूब पीता था, उससे ऐसी बात की। उसने कहा जी, मैंने कहा मेरे रब ने कुरान पाक में फरमाया जिस चीज से तुम्हारी मोहब्बत हो, जिस चीज में तुम्हारी मोहब्बत अटकी हुई हो, वो कोई भी चीज हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपसे हकीकत अर्ज कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझें, आप मेरी बात को समझें, आप ये देखें कि आपकी मोहब्बत कहां अटकी हुई है। कभी किसी इंसान में, किसी जानवर में, चाय में, नस्वार में, सिगरेट में, पान में, दुकान में, मकान में कहां अटकी हुई? और देखो ये मामला तन्हाइयों का है, ये मामला तन्हाइयों का है। अच्छा, अब जब वो आदत छोड़ेंगे इस पे तकलीफ होगी, क्यों? तबीयत में उस तरफ रगबत है। कहने लगे ये जो मालदार बंदे को अल्लाह के लिए खर्च करने का कहा जाए, इसका अजर बढ़ा हुआ होता है। क्यों? इसलिए कि खर्च करने पे उसके नफ्स पे चोट लगती है, अपनी जात के खर्च करने पे चोट नहीं लगती। ट्रेन में सफर कर रहा था, गुजरांवाले के एक साहब थे, वो कच्चे कच्चे जो है ना आम थे, वो भी खा रहे थे। उसके बाद गोश्त का एक हॉट पॉट भरा हुआ था, तीन आदमी मिलके खा रहे थे। तो एक बंदा कहने लगा तू शेख होके भी खा रहा है। उसने कहा दूसरे को, उसने कहा शेख अपनी जात पे, आजकल का शेख अपनी जात पे बहुत खर्च करता है, आजकल का शेख अपनी जात पे बहुत खर्च करता है। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा आजकल का शेख अपनी जात पे बहुत खर्च करता है, आजकल का शेख अल्लाह पे खर्च करने वाला बन जाए। कहने लगा मुमकिन नहीं। मैंने कहा मेरे पास मिसालें हैं शेखों की भी, हराइयों की भी, इन दोनों बेचारों को ताने दिए जाते हैं। मैं बेचारा कह रहा हूं, इन दोनों को ताने दिए जाते हैं। मेरे पास है मिसालें हैं। कराची में एक साहब मुझे मिले, उसने कहा जी मैंने आपसे सुना था वहां कराची में दस में कि अपनी महबूब चीज जो है, और मेरा महबूब मेरा माल था, मैंने अल्लाह से कह दिया या अल्लाह ये मेरा माल है और तू है, दिया तूने है, तू बीमारी के नाम से छीनना जानता है, तू जेल के नाम से छीना जानता है, तू डाके के नाम पे छीना जानता है, तू चोरी के नाम पे छीनना जानता है, लेना जानता है, हैं? या अल्लाह तू किसी नुकसान के नाम पे लेना, उनको आग लग जाए, अल्लाह तू जानता है, तेरे पास इल्म है, तू कामिल है, तू अपनी कुदरत पे रखता है, तो या अल्लाह उससे पहले पहले कि ये मेरा माल किसी तरह जाया हो जाए, या मैं जाया हो जाऊं और ये किसी और की मिल्क में चला जाए और वो नुकसान अय्याशी में नाफरमानी में लग जाए, तो या अल्लाह आज के बाद मेरा माल है और तेरा हुक्म है, बस मेरा माल है और तेरा। तो भाई अब आप बताएं कि हम अपने रब से बैठ के क्या अहद करें? इस मुख्तसर सी नशिस्त में कोई फैसला कौन अंदाज अख्तियार करें? क्या करें हम, क्या करें? अपनी जान के एतबार से क्या कुर्बानी दें? पहले तो जान के एतबार से बात करें, जान पहले, जान पहले, जेब नहीं पहले दिल, पहले तो अपनी जान के एतबार से हम कुर्बानी करें। क्यों? देखो बात सुनो, माल इसी जान के लिए खर्च करते हैं, करोड़ों लगा देते हैं इलाज के नाम पे, हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे, इज्जत के नाम पे। एमएनए जो एमबीए बनते हैं करोड़ों लगाते हैं, तो क्या होता है? कोई इनको अर्श के ऊपर प्लॉट मिल जाता है या चांद के ऊपर तीन मरले की जगह आठ दस मरले मिल जाती है? ये जान कि मेरी, मुझे लोग पूछे सलाम करें, यही है ना अल्लाह वालो? तो सबसे पहले तो अपने जान की कुर्बानी, اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنے جذبات کی قربانی ہے. مجھے ایک خاتون کہنے لگی، اس نے کہا کہ آپ تو پردے کی بات کرتے ہیں، بس یہاں جذبات ٹوٹتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہماری انا کو تسکین پہنچتی ہے. لفظ اس نے کہا کہ ہم کچھ ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہے، لیکن ہماری انا کو تسکین پہنچتی ہے. مجھے اس خاتون نے کہا، اور ہم کہتے ہیں ہماری کوئی حیثیت ہے، اور پھر لوگ ہمارے پیچھے مارے مارے پھریں، ہماری تو اور کچھ حیثیت بن جاتی ہے. کہنے لگے جب بندہ اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت ڈوب جاتی ہے، اور یہ جو بندے پہ حال آتا ہے نا، نفس پہ چوٹ لگتی ہے، اندر طبیعت پہ چوٹ لگتی ہے، چاہتوں پہ چوٹ لگتی ہے، من پہ چوٹ لگتی ہے، بندے پہ جب یہ حال آتا ہے نا، اس پہ اللہ پاک جل شانہ ہو اس بندے پہ ترس کھاتے ہیں. دیکھو بھائی اللہ والو، بچے پہ حال آتا ہے رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، ماں اس وقت ترس کھاتی ہے. بچہ سو رہا ہوں، ماں کہتا ہے کام کر لو، ٹھیک ہے. اچھا بچہ ہوا کرتا ہے تو بھی ماں متوجہ نہیں ہوتی. پھر بچہ جب زیادہ چیخو پکار کرتا ہے، ماں سب کچھ چھوڑ کے، میرا رب سب کچھ چھوڑ کے، اللہ اس اللہ پاک اللہ عاجز نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے، میں مثال دے رہا ہوں، میرا رب ساری کائنات کو دے، ہر پل دے، ہر وقت دے، اللہ قادر ہے، ہے قادر. میرا رب سب کچھ چھوڑ کے، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس پہ حال آتا ہے، چاہے وہ حال کسی کیفیت کا ہو، وہ جان سے خرچ کرنے کا ہو، وہ مال سے خرچ کرنے کا ہو، وہ جذبات سے خرچ کرنے کا ہو، وہ اوقات سے خرچ کرنے کا ہو، جس حال میں اس کے اوپر کیفیت ہے، اللہ پاک فوری اس پہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض صحابہ کرام نے، بعض اللہ والوں نے، بعض نیک لوگوں نے، بعض درویشوں نے اللہ جل شانہ سے حال مانگا. ہم نہ مانگیں، خیال کرنا، اللہ سے مشقت نہ مانگنا، اللہ سے تو عافیت مانگنا اللہ والوں، اللہ سے مشقت نہ مانگنا، حال نہ مانگنا. انہوں نے مانگی، ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ بخار جو ہے، جو ایک دن کا بخار ہو، اللہ جل شانہ کو اس کو 3 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، اس پہ شکر کرے. انہوں نے دعا کی، یا اللہ ساری زندگی مجھ پہ بخار رہے، ہاں یہ بخار صرف میری عبادات میں خلل نہ ڈالے، اور ساری زندگی ان کو بخار رہا، ساری زندگی ان کو بخار رہا. ارے لوگوں نے تو، اللہ کو چاہنے والوں نے تو اللہ سے مشقتیں مانگی، جس طرح مشقتوں کو ٹلواتے ہیں نا، وہ مشقتیں مانگتے تھے. انہیں پتا تھا اس مشقت کے پیچھے ایک اور چاہت کھڑی ہے، وہ رب کی چاہت ہے. جو رب کی چاہت کو اپنے ساتھ لے لے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، اس کو ساری کائنات مل جائے گی، دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اور یہ ہوگا اس وقت جب اللہ جل شانہ کے لیے اپنی مرغوب و محبوب چیز کو، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ ہاں حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، مکہ کعبہ بیت اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ جب تک اپنی محبوب چیز کو نہیں چھوڑیں گے. ہر بندے کی محبوب اپنی چیز ہے، ہر بندے کی اپنی مرغوب چیز ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مجھے مکھڑ کا حلوہ، مکھڑ شریف ہے نا، ایسے میرے یاد آیا، مکھڑ شریف کا ایک حلوہ مشہور ہے، شاید آپ نے کبھی کھایا یا سنا، کبھی سنا کسی نے؟ مکھڑ کا ایک حلوہ ہوتا ہے، میرے پاس ایک بندہ لایا، میں نے بھی کھایا ہوا ہے. کہہ جی مجھے مکھڑ کا حلوہ جو ہے نا، وہ بڑا مرغوب ہے، سفر ہو، حضر ہو، جہاں ہو، میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، آج کے بعد مکھڑ کا حلوہ چھوڑتا ہوں. کہنے لگے اپنی ساری مرغوبات اللہ کو دے چکا ہوں. ہاں اپنی ساری مرغوبات اللہ کو دے چکا ہوں، باقی ایک رہتی تھی یہی، یہ نہیں ہے کہ صرف حلوہ چھوڑ دیا، باقی ساری محبوب چیزیں اللہ کو دے چکا ہوں، اپنی ساری مرغوب چیزیں اللہ کو دے چکا ہوں، اپنی ساری مطلوب چیزیں اللہ کو دے چکا ہوں. ایک अटक रहती थी। मैंने कहा ये एक तेरा नफ्स इसमें अटका हुआ है। और शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की बात बता, तेरे किस किस बोतल से, किस किस डब्बे से, किस किस दवाई से, किस किस खुशबू से तेरा तेरा तेरी रूह निकलेगी, तेरी जान तो एक एक चीज में अटकी हुई है। उस दरवेश ने कहा दुनिया दुनिया में रहना है, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे, शादियां की, औलाद हुई और दुनिया के पेशे अख्तियार की। कोई नबी अलैहिस्सलाम लोहार थे, जीरे बनाते थे, कोई कपड़ा बनाते थे, कोई क्या पेशा करते थे, कोई क्या पेशा करते थे, सहाबा कराम भी यही पेशा करते थे, अरे अल्लाह वाले भी यही पेशा करते थे, कोई क्या पेशा, कोई क्या पेशा। ये इस बात की निशानी है कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, बस फर्क कितना होता है। हमारी नजरें देखती हैं कि वो दुनिया में है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया में नहीं होता। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अपने मन को मेरे दोस्तों अपने मन से सवाल करें, आज बैठ के, आज के बाद रोज सवाल करें। क्योंकि वो जो बात सुनी थी कि जिस जो कि तू उस वक्त तक अपनी महबूब चीज को जब तक कुर्बान न करे, और तेरी महबूब चीज कौन सी है? माल है, जज्बात है, जान है, औकात है, तीतर बटेर है, मुर्ग है, चाय है, पान है, सिगरेट नस्वार है, क्या चीज है?